ओह, ठंडा है डॉक्टर तुम्हारा आला।
चुप रहो।
मैंने सोचा सैडिज्म भी है, ये भी फ्रिज में रखा था क्या?
जी नहीं, मैं बेवकूफ हूं जो तुम जैसे मरीज के साथ दोस्ती किए हूं। एक मिनट चुप भी रहा करो।
बस करो, जरा मुझे भी दो ताकि रजा के दिल की आवाज मैं भी सुनूं। मैं अली रजा की शादी के अगले दिन उसे कहना चाहता था कि तुम्हारे बाप का दिल मेरे सीने में है। वाह वाह, घड़ी की तरह मुनज़्ज़म है।
अगर तुमने बेतवज्जी की तो घड़ी बंद भी हो सकती है।
मौत मेरे और तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम डॉक्टर हो, उसी दायरे में बोलो। वक्त आने पर हर इंसान को जाना है।
क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि ज्यादा टेंशन मत लेना?
तुमने कहा था, मैंने नहीं।
जलाल, तुम्हारी बीमारी सीरियस है, तुम्हें मजाक सूझ रहा है।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। क्या हुआ कि मुझे यहाँ बुलाया है? ऑफिस क्यों नहीं आए?
वहाँ आने की हिम्मत नहीं हुई, आपकी गाड़ी देना था। इन दिनों मेरा पैदल चलना ही सबके लिए मुफीद है।
अपने पास ही रखो, इन दिनों ड्राइव करना पैदल चलने से तुम्हारे लिए बेहतर है।
पैर तो काबू में है, लेकिन मेरी आँखें और मेरे हाथ मेरे काबू में नहीं।
देखो, तुम्हारे ख्याल में ज़्यादातर लोग क्यों ड्राइव करते हैं? या तो कोई काम नहीं है, या इश्क हो गया है, और या किसी से लड़ाई किए हैं, बारिश की तलाश में है कि अगर रोना हो तो पता ना चले। जितना दूर जाओगे तुम्हारे लिए बेहतर है। ये गाड़ी भी मेरी नहीं है, फरीदा की है। निकाह के वक्त तुम्हें देने वाली थी, अब जब नियत कर चुके हैं तो फिर ये तुम्हारी हो गई।
ठीक है, लेकिन अभी तो मेरा निकाह नहीं हुआ है।
अभी अपने पास ही रखो, बाद में ले लूँगा। ठीक है, खुदा हाफिज़।
खुदा हाफिज़। शायन साहब,
क्या हुआ?
आप हमारी शादी के दूसरे दिन कोई बात मुझसे कहने वाले थे।
लेकिन अभी तो शादी नहीं हुई।
आप लोग तो जो नियत करते हैं वो हतमन करके दिखाते हैं ना। मेरी शादी का तो कोई अता पता नहीं है, बता देना।
तुमको तो हमेशा इतना खुश नहीं रहना है, तो फिर परेशानी किस बात की? खुदा हाफिज़।
खुदा हाफिज़।
अपना ख्याल रखना, फुटपाथ से जाना।
मैं एक बाप हूं और अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता हूं। सही सोचा हो या गलत, सही काम किया हो या गलत, मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूं। कल से इस मौजू पर बात नहीं करूंगा, लेकिन अगर अगली बार की नौबत आई तो मैं बोलूंगा और तुम सुनोगी, समझी?
जी।
एक थप्पड़ रसीद करना बाकी रह गया है। मैंने अब तक तुम लोगों को नहीं मारा, लेकिन
अगर मारा होता तो कम चोट लगती।
Oh. एक हफ्ता तो गुजर जाने दो।
आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि आज नवा दिन है।
तो तुम्हारे ख्याल में क्या करूं?
मुझे एयरपोर्ट जाने दें।
किस लिए?
अम्मी खुदा के वास्ते, आप तो जानती हैं।
मैं तुमसे ज्यादा जानती हूँ। मुझे मालूम है अली रजा को छोड़ चुकी हो। ठीक है, सबकी गलती थी, ये भी मानती हूँ। अब मैं कहूँ किस किस इस्तकबाल में जा रही हो?
फरजाद मेरे लिए ईरान आ रहा है।
अजहर जान, मेरी बेटी, प्यारी बेटी, बचपना मत दिखाओ। जिस वक्त इस दरवाजे से अंदर आए तो कहना तुम्हारे लिए आया है, वरना एक दिन में हजारों लोग एयरपोर्ट पर आना जाना करते हैं।
तो क्या एयरपोर्ट ना जाऊं?
अगर मैं भी कहूं जाओ तो तुम्हें नहीं जाना चाहिए। अपनी कदर समझो।
मलिकी साहब के कुछ केस मैं देखता हूँ।
बड़े वाले मलिकी या छोटे वाले मलिकी?
बड़े वाले, रफ़ी मलिकी साहब। अलबत्त उनका बेटा आज ईरान आ रहा है।
तो आप मुझसे इस वक्त क्या चाहते हैं जनाब?
सोहराबी।
सोहराबी साहब,
मेहमान ही पुकारें और अच्छा लगेगा।
मैंने पूछा मुझसे क्या चाहते हैं।
जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। रफ़ी साहब इस बात से परेशान हैं कि आप उनके बेटे के लिए ख़तरा ना बने।
रफ़ी साहब कौन? उनका बेटा कौन?
मुझ में सुनने की हिम्मत है फहीम साहब।
मैं ना उन्हें जानता हूँ और ना उनसे कोई काम है।
रफ़ी साहब भी यही चाहते हैं। हम जानते हैं कि आपके साथ क्या हुआ है। शायद आप फरजाद साहब को कसूरवार समझते हों।
मैं कसूरवार की तलाश में नहीं।
ये रफ़ी साहब का इकलौता बेटा है, उनके लिए अहम है कि फरजाद साहब के लिए कोई ख़तरा ना हो।
जनाब आली, मुझे ना तो फरजाद साहब से काम है, ना ही अजहर साहिबा से और ना ही किसी और।
रफ़ी साहब चाहते हैं कि अपनी गलतियों की तलाफी करें। अलबत्ता मादी लिहाज से, मानवी लिहाज से तो कुछ भी नहीं हो सकता, जाहिर सी बात।
मुझे किसी के पैसे की ज़रूरत नहीं।
देखो अली रजा, माफ़ करना इतना फ्री हो गया। मैं भी तुम्हारी तरह हूँ अली रजा। मैं तो ना पैसे वाला हूँ और ना ही मुझे सर दर्द पालने का शौक़ है। इस फैमिली ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, तुम्हारा दिल भी तोड़ा है, जानता हूँ। और तुम्हें अजहर से नाराज़ होने का हक भी है, फरजाद से दिल में नफरत रखने का भी हक है। ये चेक मुझसे लो या ना लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ले लो, चूँकि पुलिस की जेब से एक पाई निकालना भी आसान नहीं है। इनके पास इतना है कि समझ में नहीं आता खर्च कैसे करें।
कितने फदार वकील हो माशाल्लाह।
देखो चूँकि मेरी पढ़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है, लिहाजा मैं अभी वकील नहीं हूँ, और मैं अपने आप को धोखा नहीं दे सकता। चूँकि उन्होंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया और ये काबिल तलाफ़ी नहीं है।
मैंने तो कहा परेशान मत हो, मुझे उनसे कोई काम नहीं।
कितना लिखूं?
मैं पैसे नहीं लूंगा।
गलती तो नहीं कर रहे हो?
नहीं, शुक्रिया।
ये मेरा नंबर है, मेरा मोबाइल 24 घंटे ऑन रहता है। बहुत दिनों से कोई ढंग का आदमी नहीं देखा था। खुदा हाफिज।
उसने फोन किया था कि थोड़ा सा वक्त चाहिए, मैंने दे दिया, अब हम उसके पीछे नहीं दौड़ेंगे।
इतनी बेवकूफ़ी मत दिखाओ खुदा के वास्ते।
मैंने सोच लिया, किसी पर भरोसा नहीं करूँगी। पहला कदम मैंने उठाया, बाकी काम फरजाद का।
ये हुई ना अकल की बात।
नौशीन, मैंने कोई गलती तो नहीं की?
तुमने अपने दिल की बात सुनी है, इंसान का दिल कभी गलती नहीं करता।
मुझे खुद पर भी शक है।
शक मत करो मोहतरमा, इंसान को ज़िंदगी में कितनी बार फैसला करने का मौका मिलता है।
सिर्फ तुम मेरे साथ हो, सब कहते हैं मैंने गलत किया।
मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ।
मुझे मालूम है, मेरे लिए बहुत अच्छी बहन हो।
इंतज़ार करते अली रजा भी आ जाए।
मेरे ख्याल में इतनी जल्दी नहीं आएगा वो।
तो क्या हुआ, लेट ही खाना खा लेंगे?
हाँ तो तुम तो बड़ा इंतजार कर सकते हो।
मैंने सिर्फ थोड़ा सा दही रोटी लिया है।
तो फिर भूख लगी है ना?
नहीं, तुम बैठो, हम लाते।
भूख लगी है इसलिए कि रात के 10 बज चुके हैं मोहतरमा।
ये लीजिए,
पहले सूप।
पहले चावल।
सूप बहुत अच्छा बना है।
सूप आखिर में लेंगे।
जो आखिर में खाया जाता है वो सलाद है। पता है क्यों सूप नहीं ले रहे? इसलिए कि सूप को चावल में डालने में शर्म आ रही है।
जलाल साहब की खूबी तो यही है, कभी बदलते नहीं। 2 साल बाद भी अगर मिलें तो वैसे ही के वैसे रहेंगे।
खुदा का शुक्र है कि हमारे ऐप को अच्छाई कहा जा रहा है।
बातें बनाने के बजाय सूप को चावल पर डाल लो, कुछ नहीं कहेंगे।
ओफो, हमारा सूप खाना भी एक कहानी बन गई है।
क्या हुआ शिकू? ये बातें हम इसलिए कर रहे हैं ताकि तुम खुश रहो।
हम सब कोशिश कर रहे हैं कि जाहिर करें कि कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन हम सब के दिल गमगीन हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि बहुत कुछ बदल चुका है और अब पहले की तरह कभी कुछ नहीं हो सकेगा।
समझ में नहीं आता है क्या करूं। अगर चिल्लाऊं तो कहेंगे अरे बेगैरत लड़के, वो तुम्हें पसंद नहीं करती। अपनी इज्जत मत गंवाओ, शराफत से हट जाओ। और अगर छोड़ दूं तो कहेंगे अगर ये लड़का वाकई उसे चाहता होता तो इतनी आसानी से छोड़ता नहीं।
असल में मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ लेकिन कहूँ कि नहीं, शायद कहना ठीक ना हो लेकिन कहूँगा। लेकिन खुदा तुम्हें बहुत चाहता था कि जो शादी नहीं होने दी।
मेरे ख्याल में जिसकी नज़रें पहले ही से दूसरे की तलाश में हों चली जाए तो बेहतर है।
लेकिन मुसीबत यह है कि मैं अब भी उसे चाहता हूँ। लेकिन अगर वो समझती है इस तरह खुश रहेगी तो खुदा करे ऐसा ही हो। मेरी भी यही ख्वाहिश है।
इतने साल बाहर आए हो, अब तक
पसंद के बारे में तो मुझे भी मालूम।
अच्छा, अब तो मुझे भी यकीन हो गया।
जी नहीं, बहुत अच्छी पसंद है, तुमसे मजाक कर रही।
वाकई इसमें कोई ढंग की चीज नहीं है।
ऐसा नहीं है कि बेकार हो, पता है तुम्हारी पसंद बहुत पुरानी।
अच्छा,
है।
क्या पसंद?
रोशन, बस भी करो, फरजाद नाराज हो जाएगा।
नहीं बाबा,
अगर पसंद नहीं आया तो पैसे ले लो और खुद जाकर खरीदो।
रफी, तुम बच्चों के मामले में दखल मत दो।
जरा वो देखिए, आप खुद देखिए, ये मेरे साइज का है। फरजाद मुझे अभी भी बच्चा ही समझ रहा है।
तो क्या इससे बड़ी हो चुकी हो?
बिल्कुल साइज का है। फालतू बात नहीं नौशीन, चुप रहो।
आपको तो एक पाइप से बेवकूफ बना दिया।
इज्जत से नाम लो।
एक ही बात तो है।
अच्छा,
जैसा था वैसा ही है, लेकिन थोड़ा परेशान लगा। तुम्हारा सलाम बिना कहे ही पहुंचा दिया मैंने। मेरी बात सुनो आज़र, सिर्फ परेशान मत रहो, ठीक है? शब बख़ैर मेरी दोस्त।
शब बख़ैर।
तुम्हारा ये काम ठीक नहीं है।
शायद ना हो, लेकिन मुझे भी अपने आसपास के बारे में खबर होनी चाहिए।
परेशान ना हो।
कैसे ना हो?
नहीं मालूम, आज़र ने तो कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी कि उसे अकलमंद कहूँ।
दिल कोई होटल नहीं है कि आज कोई इसमें आए और कल कोई और। मैं इस लड़की के लिए बहुत ज्यादा परेशान हूँ।
तुम क्या करना चाहते हो?
अब इतना तजुर्बा तो है कि मुझे कब क्या करना चाहिए। इस वक्त मुझे सिर्फ बैठना चाहिए और यह जाहिर करना चाहिए कि मैंने कुछ नहीं देखा, लेकिन मुझे कहने दो इन सब की जिम्मेदार तुम हो।
मेरा कसूर है?
अगर लड़की गलती करे तो माँ कसूरवार है, और अगर लड़का तो बाप।
क्या कहना आपके कानून
फुरू,
का?
तुमने लड़कियों की तरबियत में कोताही की है।
मैंने अपनी पूरी कोशिश की, आप तो जानते ही हैं।
उनकी गलतियों पर पर्दा डालना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है।
अब मुझे कसूरवार ठहरा ये सब चीजों का, आप खुद उस वक्त कहाँ थे?
मैंने सोचा कि तुम तो हो। मेरी भी यही गलती थी, मानता हूं।
गनीमत है कि कम से कम थोड़ा सा तो इंसाफ है।
तो मैं यकीन कर लूं कि वो अब फरजाद को परेशान नहीं करेगा?
पूरा यकीन तो नहीं कर सकते जनाब।
क्या मतलब? मैंने तुम्हें भेजा किस लिए था वहां?
जनाब मैंने उसको डराया धमकाया और उसके नतीजे के बारे में भी बता दिया।
और पैसे लिए के नहीं?
नहीं, लेकिन इस बार मिला तो दे के रहूंगा।
देखो बेमान, मेरी बात मानो तो उससे करीब हो जाओ ताकि तुम्हारे आगे पीछे दौड़े, मुझे भी सुकून रहेगा।
जी जरूर।
अस्सलाम वालेकुम। वाह भाई पैमान साहब, आप कब तशरीफ
लाए? खुशामदीद फरजाद साहब।
बिल्कुल बदले नहीं हो, बस थोड़े बाल झड़ गए।
आप क्यों इतने मोटे हो गए?
जाओ पैमान जाओ, जरूरत पड़ी तो बुला लेंगे।
जी सर। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज फरजाद साहब।
मेरे बेटे, कभी अपने छोटे से गले मत मिला करो।
लेकिन हम और पैमान साथ पले बड़े हैं, मेरे भाई जैसा।
पैमान सिर्फ घर में रहा है और कुछ नहीं, ज्यादा करीब होने की कोशिश मत करो, समझे? चलो बेटो।
जी।
अच्छा पाइप लाए हो मेरे लिए।
कोई खास चीज नहीं है।
पढ़ाई खत्म हो गई?
तकरीबन खत्म हो गई है।
तकरीबन यानी क्या?
कुछ सरकारी काम रह गए हैं, पहली फुर्सत में डिग्री लेने जाना पड़ेगा।
तुम जानते हो कि वापस नहीं जाओगे?
जी फोन पर बताया था।
फरजाद, वहां की हर चीज को भूल जाओ।
परेशान ना हो, सब कुछ खत्म हो चुका है।
मुतमईन रहो।
जी, अब मुझे वहां नहीं जाना।
इन कागजात को देख रहे हो जो यहां लदे हुए हैं? ये सब पैसे हैं, लेकिन अब मुझमें हिम्मत नहीं है।
ये कैसे मुमकिन है?
10-15 लाख कम और ज्यादा से कोई फर्क नहीं पड़ता।
क्या कुछ हुआ है बाबा?
अब इसके बाद ये छोटा सा जो मुल्क मैंने बनाया है तुम्हें चलाना है।
आपको तो मालूम ही है बिजनेस में मुझे ज्यादा दिलचस्पी नहीं है।
ये बातें बकवास हैं, तुम कर सकते हो।
अगर आप कहते हैं तो कोशिश जरूर करूंगा।
हाँ कर सकते हो, जरूर कर सकते हो। मुझे देखकर ऐसा लगता है कि जाने वाला हूं?
बिल्कुल नहीं। ये कैसी बातें कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं।
अच्छा है कि इंसान के जाहिर से अंदर की बात नजर नहीं आती। ये भी उन चीजों में से है जिनका सीखना जरूरी है। लेकिन मैं बीमार हूं।
आप मजाक कर रहे हैं?
बिल्कुल नहीं।
डॉक्टर क्या कहते हैं?
डॉक्टर कहते हैं कि लंग्स बेकार हो चुके हैं।
वाकई ऐसा कहते हैं?
इंसान जब बूढ़ा होता है तो मौत के करीब पहुंच जाता है। ये जिंदगी का कानून है।
क्या फेफड़े के ट्रांसप्लांटेशन के बारे में सोचा है?
बेटा फरजाद, मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना है।
लेकिन क्यों?
मुझे दिलासा मत दो या मुझ पर गलती करने का इल्जाम मत लगाओ। सिर्फ मरने से पहले तमाम काम किसी के हवाले करना चाहता हूं।
बाप बेटे क्या बातें कर रहे हैं? डिस्टर्ब तो नहीं किया?
जी नहीं,
कोई काम नहीं था, सिर्फ कहने आई थी कि खाना तैयार है।
खास तौर से इनके हवाले कुछ नहीं करना है।
लेकिन आप मुझे बुरी नहीं लगती।
कोई भी तुम्हारी माँ जैसा नहीं है, कोई नहीं। हाँ, उठो उठो, चलो खाना ठंडा हो रहा है।
बहुत दिनों से एक अच्छा ईरानी खाना नहीं खाया था।
ये बताओ, अब तक तुमने खाना बनाना सीखा
नहीं? असल में वहां खाना बनाने का टाइम ही नहीं मिलता।
एक पागल खाने का मैनेजर पागल खाने में चाकर लेता है कि सब गा बजा रहे हैं। अरे छोटा सा सुना ले,
सुना चुके हो तुम।
अरे बाबा, अरे भाई छोटा सा बेकार जोक सुना चुके।
सब सब गा बजा रहे हैं सिवाय एक आदमी के।
अच्छा, अपना खाना भी तो खाते रहो ना। हाँ सुनाओ।
शुक्रिया, ये मोहनदीस बाबा ने मुझे सुनाया।
हाँ सुनाओ।
हरा लाल नीला,
ये भी बेकार होगा।
और बाकी नाच रहे हैं। पूछा गया आप क्यों नाच रहे हैं? उन्होंने कहा कि हम पागल हैं।
बहुत मजे का था, बहुत दिलचस्प था। सर ने कहा है कि अब तुम जा सकते हो।
जी फरमाइए।
बहुत दिनों से आप मेरा फोन नहीं उठा रही थी, जबकि ये तवक्को आपसे नहीं थी मुझे। मैं आपसे बात करना चाह रहा था। कई बार मैंने फोन किया इस उम्मीद में कि शायद आज बात हो जाए, शायद आप फोन उठा लें। उम्मीद कि आज ही की तरह जब भी फोन करूंगा आइंदा फिर आप मुझसे बात करेंगी और ये सिलसिला खामोशी और सुकूत का टूटेगा। मुझे अहम बातें करनी थी आपसे। बहुत दिनों के बाद आज आपकी आवाज़ सुनी, बहुत अच्छा लगा। आपका मुझसे फरार मेरे लिए नामफूम है। इल्लत तो सबब क्या इसका, क्या वजह बता सकती हैं? मेरी आवाज सुन रही हैं आप? मैं आपके जवाब का मुंतजर हूं।
फहीम साहब, सबसे बड़ा एहसान आपका मुझ पर यह होगा कि दोबारा फोन मुझे ना करें।
السلام علیکم. ابھی تک نہیں سوئیں؟
نیند میں میں ڈراؤنا خواب دیکھ رہی ہوں کہ تم اتنی رات کو واپس آئے ہو.
معاف کیجیے گا.
جلال اور فریدہ دیر تک تمہارا انتظار کر کے گئے.
اسے کیا کام تھا؟
تم سے ملنے آئے تھے.
وہ مجھ سے ملنے نہیں آتے, وہ روز آتے ہیں.
بیٹھو علی رضا.
جی فرمائیے.
آزر کا قضیہ ہوئے کتنے دن گزرے ہیں؟
تقریباً 10 دن میرے خیال میں.
اور پہلی ملاقات کے بعد سے اب تک؟
1 سال سے کم.
اس درمیان میں تم سے کوئی بات کی؟
اب تو مجھ سے ناراض ہی لگتی ہیں.
علی رضا میں تمہیں اس حالت میں نہیں دیکھنا چاہتی.
بہت مشکل کام ہے.
مجھے بھی معلوم ہے, لیکن اب اس قصے کو ختم کرو. ایک مرد کی طرح اپنی بات پر ڈٹے رہو.
کوشش کروں گا.
بس کوشش ہی نہیں, تم بیمار ہوئے, بخار چڑھا, طبیعت خراب ہوئی, لیکن اٹھنا تو پڑے گا نا. مجھے نہیں معلوم کہ اس کی دوا کیا ہے یا کتنا وقت لگے گا, لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ علی رضا کو پہلے کی طرح دیکھوں. تمہیں پریشان ہونے, ناراض ہونے, اداس ہونے, رونے دھونے سب کی اجازت ہے.
میں رویا نہیں.
یہ بہتر ہے. جاؤ چلاؤ, پکڑو جا کے فرجاد کو, تھپڑ لگاؤ اس کو, آزر کی شکایت کرو.
میرے بس میں نہیں.
تو پھر سب بھول جاؤ, کچھ بھی نہیں ہوا ہے.
یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے دھوکا دیا گیا ہے امی.
تم سے کھیل کیا گیا ہے, دھوکا نہیں دیا ہے. آزر بے وقوف تھی کہ تم جیسے اچھے لڑکے کو چھوڑ گئی, لیکن اب سب کچھ ختم ہو چکا ہے. میں ایک ماں ہوں, مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. میرے دل میں طاقت نہیں ہے. تمہیں ہمیشہ کی طرح خوش دیکھنا چاہتی ہوں. تمہارے لیے یہ مشکل ہے, لیکن میری خاطر علی رضا, اپنی خاطر کوشش کرو.
ٹھیک ہے.
میں تمہیں بہت چاہتی ہوں علی رضا, تم اس سے زیادہ کے حقدار ہو. میں نہیں چاہتی کہ کوئی تم پر ترس کھائے. علی رضا جی کے علاوہ اور؟
صرف جی. جی شکو صاحبہ, جی امی جان.
وہی شکو کہو.
ٹھیک ہے.
میں سونے جا رہی ہوں, تم بھی جا کے سو جاؤ, دیر ہو گئی ہے.
امی,
کیا ہے؟
آپ کے پاس میرے لیے تھوڑا ٹائم ہے؟
بولو, آؤ بیٹھو.
کچھ باتیں آپ سے کرنی تھی.
کہو.
اس دن جب آزر یہاں سے گئی تھی تو آپ کو یاد ہے؟ کہا تھا سب ختم ہو چکا ہے, اب اپنے دل پر قابو رکھو. اگر میں بھی آپ کی طرح سوچتی تو اب تک علی رضا اور آزر کی پتہ نہیں کب کی شادی ہو چکی ہوتی. امی میں آپ سے کچھ زیادہ تو نہیں مانگ رہی ہوں, ایک اچھا لڑکا ملا ہے تو کیوں ہاں نہیں کہہ دیتی ہیں؟ یہ کوئی بہت بڑی چیز ہے کیا؟
تم چاہتی ہو جو چاہو اس تک پہنچ جاؤ؟ جی ہاں, یہ بڑی خواہش ہے.
قسم سے ایک قدم باقی ہے, میری رقیب راستے سے ہٹ چکی ہے.
روشن بیٹا, چلو مان لیتے ہیں سب ٹھیک ہو رہا ہے. اپنے باپ سے کیا کہو گی اگر نہیں مانے؟
کیوں نہیں مانیں گے, علی رضا اتنا اچھا لڑکا ہے.
نوشین جان, علی رضا اس کا منگیتر تھا جس کی تمہارے بھائی سے شادی ہونے والی. مجھے نہیں لگتا ہے کہ تمہارے باپ یا فرزاد ہی پسند کریں کہ علی رضا اور آزر ایک دوسرے سے نظر ملائیں. اور اگر شادی کے بعد کچھ اور صورتحال ہو جائے اور آزر کو فرزاد پسند نہ آئے اور علی رضا کا رویہ پسند آ جائے تو کیا سوچے گی؟
سب کی برائی مصیبت ہوتی ہے اور علی رضا کی اچھائی.
بہرحال اگر آزر اور فرزاد کی شادی ہو گئی تو تمہیں علی رضا کو چھوڑنا پڑے گا.
اوف اوف, مجھے کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے. اگر ان دونوں کی شادی نہیں ہوتی ہے تو علی رضا پھر سے آزر کے چکر میں پڑ جائے گا اور میں اسے کھو دوں گی. اور اگر شادی ہو جاتی ہے تو फिर भी मैं अली रजा से शादी नहीं कर सकती।
मुझसे कुछ ना पूछो, हम क्या करें ये एक हकीकत है, कुछ नहीं हो सकता।
मैं इस हकीकत को बदल कर रहूंगी किसी भी कीमत पर।
कैसे हो?
देखने में तो ठीक हूँ।
कॉलेज नहीं गए?
अगले हफ्ते से।
तुम्हारे लिए बहुत परेशान थी।
आपकी मोहब्बत है।
जो तुम्हारे साथ हुआ वो अच्छा इत्तेफाक नहीं था।
इत्तेफाक ही कहिए शम साहिबा। किसी को गाड़ी मारती है, कोई पानी में गिरकर मरता है, और किसी के खाना खाते वक्त लुकमा गले में अटक जाता है।
हौसला तो बड़ा अच्छा है।
कम से कम कोशिश तो कर रहा हूँ।
हर इंसान का कोई ना कोई दुश्मन होता है।
जी हाँ।
कभी दुश्मन को खुश मत करना।
जी जरूर।
हम सब तुम्हें चाहते हैं। उन दिनों भी तुम्हारे लिए परेशान थे और अब बहुत खुश हूँ, बहुत खुश, क्योंकि तुम खुश लग रहे हो।
लेकिन आसान नहीं है शम साहब।
तो मुझे भी अंदाजा है।
आपको मालूम है सबसे मुश्किल क्या है?
तुम खुद ही बताओ।
ये जाहिर करना कि कुछ नहीं हुआ है।
लेकिन कुछ हुआ तो है।
अफसोस के साथ हाँ। शायान साहब नहीं है?
नहीं।
लेकिन खाना खाने आएंगे।
ठीक है, मैं भी अपने काम पर चलता हूँ।
मलिकी साहिबा, सब आपके खिलौने तो नहीं है। ये तो नहीं तय पाया था कि हम आपकी पसंद के मुताबिक ही काम करेंगे।
इजाजत तो दे इंजीनियर साहब, फरजाद बस आज़र से मिलना चाहता है। आज़र ने भी कहा कि आपकी इजाजत की सूरत में मिल सकती है। मैंने कहा कोई बात नहीं, आपसे मैं बात कर लूंगी। मुझे मालूम है कि आप उन्हें मिलने से मना नहीं करेंगे।
आपने गलत सोचा मलिकी साहिबा। मेरी ज़ाहरी वज़ाहत पर ना जाएं, मैं अब भी रिवायती और क़दामत पसंद हूँ।
अलबत्ता हर शख्स की सोच काबिल एहतराम है। इन दोनों का बुरा इरादा नहीं है, बस एक छोटी सी मुलाकात।
इस खास मौजू में मेरी सोच सिर्फ मेरे लिए काबिल एहतराम नहीं है। जिनकी बात कर रही हूँ उनमें से एक मेरी बेटी है। आपके भाई को सही रास्ता अपनाना चाहिए। घर पर आए, बड़े लोग बात करें और बाकी चीजें, ये नए जमाने के फैशन मुझे पसंद नहीं है।
इंजीनियर साहब, आपकी शायन शान नहीं।
क्या मेरे शायन शान नहीं है?
प्लीज ऐसा मत करें, फरजाद ज्यादा कुछ नहीं मांग रहा है, एक छोटी सी इजाजत।
मेरे ख्याल में पूरी बात हो चुकी। आपके भाई का पहले का रवैया अब तक मुझे याद है।
हेलो हेलो इंजीनियर साहब, मैं आपकी आवाज़ नहीं सुन पा रही।
मैंने कहा कि अगर आपका भाई सच्चा था तो आपके पीछे नहीं छुपता, सामने आकर बात करता।
हेलो इंजीनियर साहब,
आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? मैं नहीं सुन पा रही हूँ। हेलो हेलो। बुरी तरह से गुस्से में है।
उनके घर चलते हैं।
जनाब से कहो, वो जानते हैं क्या करें।
बाबा से
इतना पैसा खर्च करेंगे कि उनके चारों तरफ के पड़ोसियों को खरीद लेंगे और वो पड़ोसी दिन रात तुम्हारे गुण गाएंगे ताकि वो सुधर जाएं।
तो मैं खुद फरजाद साहब के पास जाऊंगा।
अच्छी बात है।
अगर मैंने देखा या सुना कि आज़र ने उस लड़के से चोरी छुपे बात की, फोन पर या मिलने गई, तो ये शादी नहीं होगी।
सलाम अलैकुम। मैं भी ठीक हूँ। नहीं, मैं थकी नहीं हूँ। घर के काम तो रोज के हैं।
मैं बिल्कुल संजीदा हूँ।
मैं समझ गई थी, लेकिन बताओ क्या हुआ है?
अगर एकदम रिवायती अंदाज में मिठाई और फूल लेकर गेट से आए माँ बाप के साथ, तो उसके माँ बाप से बैठकर बात करेंगे। वाज़े है?
जी जनाब, जरूर जनरल साहब,
जरूर।
रात तक कोई फोन ना करे, किसी से बात नहीं कर सकता मैं।
बाबा गुस्से में थे
बहुत ज्यादा।
क्यों?
नौशीन उन्हें फोन करने वाली थी।
कान खोल कर सुन लो, अगर वाकई इस लड़के से शादी करना चाहती हो, ना उससे मिलोगी और ना फोन पर बात करोगी। वो बाकायदा हमारे घर रिश्ता लेकर आएंगे, समझ गई?
इस बार अपने बाप की बात सुन लो,
اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کچھ ہو بھی جائے تو کم سے کم بولنے کا منہ تو
رکھے گا۔ مجھے لڑائی نہیں کرنی ہے، زندگی گزارنی ہے۔
ہمارے حوالے کر دو، نقصان نہیں ہوگا۔
ڈسپوزیبل برتن سے مجھے نفرت ہے۔
ہر بار یہی کہتے ہیں، تو پلیٹ میں کیوں نہیں ڈال لیتے ہیں؟
چونکہ برتن دھونے سے بھی نفرت ہے۔
کس نے کہا کہ آپ خود دھوئیں؟
تو کس سے کہوں، شم صاحبہ سے؟
چھوڑیے بھی، میرے خیال میں یہ ڈسپوزل ہی بہتر ہے۔
کالج کا کیا کیا؟
سنیچر کو جا کر کچھ یونٹ کینسل کرنا ہے۔
کتنے؟
یعنی سیمسٹر چھوڑ دوں گا۔
کیوں؟
کچھ دن کالج سے دور رہنا ہے۔
ہاں ٹھیک سوچا ہے، کہیں گھومنے چلے جاؤ۔
جی ہاں، لیکن کوئی ساتھی ملے، ہم عمر۔
اگر ہم عمر نہ کہتے تب بھی میں نہ آتا۔ سنا ہے نوشین ملکی کے ساتھ پینٹنگ نمائش گئے تھے؟ اس لڑکی سے دور رہو۔
وہ صرف آذر کا پیغام لائی تھی۔
آذر کی اپنی فیملی نہیں ہے جو دوسروں کے ذریعے پیغام بھیجتی ہیں؟
کچھ ہوا ہے جو میں نہیں جانتا؟
کچھ نہیں، زمانہ بدل گیا ہے۔
السلام علیکم۔
علیکم السلام۔ کیا قحط پڑنے والا ہے؟
بہت شکریہ، آپ نے بھی بہت زحمت کی۔
محبوبہ بیچاری تو تھک گئی ہوگی۔
آپ بجائے اس کے کہ محبوبہ کی تھکان کے بارے میں سوچیں، اسے فرزاد کے آنے کا گفٹ دیں۔
میں پیسے خرچ کرنے کا طریقہ جانتا ہوں۔ اب یہ سب کس کے لیے؟
فرزاد کے آنے کی پارٹی کے لیے ہے۔
ہمارے کتنے رشتے دار ہیں کہ پارٹی کرنی ہے؟
جو تھے آپ نے انہیں بھی بھگا دیا۔
وہ ہمارے پیسے کے رشتے دار تھے۔
بہرحال مجھے فرزاد کی فیملی کو بلانا ہے۔
فرزاد کی فیملی ٹھیک ہے، خاندانی لوگ ہیں۔
محبوبہ ذرا چائے بناؤ۔
ٹھیک ہے۔
تو پھر آپ راضی ہیں؟
میں منع نہیں کروں گا، جو کرنا ہے کرو، برباد کرو، کوڑے میں ڈالو۔
اگر نوشین ہوتی تو کہتے وہ خود ہی کمائے، اپنے مہمانوں پر خرچ کرے، لیکن فرزاد کے لیے اتنی فضول خرچی۔
ایسی بات نہیں ہے۔
کچھ نہیں کہوں گی کیونکہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ خود جانتے ہیں کہ میں ان دونوں بچوں کے درمیان کوئی فرق نہیں سمجھتی، لیکن آپ، جی ہاں، آپ سب کے بارے میں کنجوسی کرتے ہیں سوائے فرزاد کے۔
فرزاد کی کنڈیشن الگ تھی۔
تو کیا آپ کو بھی اپنا بچپنا یاد ہے؟
مجھے یاد نہیں ہے، لیکن فرزاد کو یاد ہے۔
چلتی ہوں، اس بحث کا کوئی فائدہ نہیں، اور میری طبیعت بھی ٹھیک ہے، میں خراب نہیں کرنا چاہتی۔
میں بھی ٹھیک ہوں، اور اچھا ہو جاؤں گا، بہت اچھا۔ یہ چائے کا کیا ہوا؟
اس طرح آپ کا پیٹ خراب ہو جائے گا۔
اس نے بڑی ڈھٹائی کے ساتھ مجھے فون کیا تھا۔
سب جانتے ہیں، آپ پریشان نہ ہو۔
ڈھٹائی کی بھی حد ہوتی ہے۔
ہم آپ سے بتائے بغیر بھی کہیں باہر مل سکتے تھے۔
تم کیا کر سکتی تھی؟
میں نے کہا تھا اجازت لینے کے لیے۔
میں تمہیں خبردار کرتا ہوں، تم سب کو خبردار کرتا ہوں، دو بار بے عزتی ہو چکی ہے، دو بار ٹھوکر کھا چکے ہیں، لیکن میں تیسری بار یہ ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ جو کچھ بھی ہونا ہے میرے ہی سامنے ہوگا۔
ضرور ضرور، آپ کھانا کھائیں۔
ایک فون بھی نہیں ہونا چاہیے جب تک دونوں کا نکاح نہیں ہو جاتا، البتہ اگر
ضرور
ہو۔ میں نے سنا نہیں۔
جی،
بچپنے سے ہی ہم اکیلے ہی تھے، सिर्फ हम ही लोग थे और कोई नहीं।
इसलिए कि बाबा ने तमाम रिश्तेदारों से तर के ताल्लुक कर लिया था।
सिर्फ उसी साल एक हफ्ते के लिए शुमाल घूमने।
इसीलिए तो जो हमको देखकर मुस्कुराता है हम उसे पसंद कर लेते हैं।
तुम्हारा मतलब आज़ार है?
क्या आज़ार के अलावा भी कोई तुम्हारी जिंदगी में है?
जब गया तो फौरन उसे भूल गया था, उसके बारे में कभी सोचा भी नहीं, लेकिन दो साल बाद से याद आने लगी।
वाह भाई वाह, क्या हाफिजा है, क्या मोहब्बत है। तुम्हें लगता है तुमने उसके साथ बुरा किया?
जब तक तुमने उसके बारे में नहीं बताया था तब तक नहीं, लेकिन बाद में तरस आने लगा। असर नहीं जानती थी कि मैं उसे चाहता हूँ।
वाकई उसे चाहते हो?
हाँ, लेकिन पता नहीं क्यों किसी को यकीन नहीं आता।
मैं यकीन करूंगी, वक्त आने पर तुम्हें भी मुझ पर यकीन करना होगा।
खुदा हाफिज़।
खुदा हाफिज़। जब से शम साहिबा ने मुझे फोन किया है उस वक्त से सोच रही हूँ कि आपको मुझसे क्या काम हो सकता है।
जब से अली रजा ने कहा है कि उसकी कोई साथी किसी प्रॉब्लम में है और मदद चाहती है, उस वक्त से हमारे दरमियान ताल्लुकात बदल चुके हैं। अली रजा मुझे मेरे बेटे की तरह बहुत ही अजीज हैं। मैं इस बात से शर्मिंदा हूं कि तुम्हारी बात पर पहले क्यों नहीं यकीन किया। तुम्हें बुलाया है कि बताऊं? अली रजा को दिमाग से निकाल दो। बेटा, ये जो तुम कर रही हो वो ठीक नहीं है।
मैं भी जरूर डरावनी होंगी, अलबत्ता डरावनी मुनासिब लफ्ज नहीं है, पुरअज़्म बेहतर है।
अगर अली रजा भी चाहे तो मैं मना करूंगा।
मुझे डरा रहे हैं शायन साहब।
मैंने अब तक नहीं बताया कि तुम किस लिए मेरे पास आई थीं। जानती हो कि अगर अली रजा को पता चल गया तो क्या होगा?
इत्तेफाक से अच्छी बात है, उसे बता दीजिए। क्या पता अगर उसे पता चले कि कोई है जो उसके लिए कुछ भी कर सकता है तो शायद वो भी मुझे पसंद करने लगे।